सत्यवचन। नमस्कार, कार्यक्रम सत्यवचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय श्रोताओ, इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से दूसरी पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है निर्गमन। हम आशा करते हैं कि इस पुस्तक से आपको आत्मिक लाभ मिलेगा। तो आइए, अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले आइए सुने ये मधुर गीत।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब प्रभु की दया से कुशल पूर्वक होंगे और उसके वचन की संगति में रहकर आत्मिक आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं और आज भी प्रतिदिन की तरह उसके जीवित और सच्चे वचन में से सीखने और मनन करने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सबों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि आज भी आप अपने जीवन में नई आशीषों को प्राप्त करेंगे। तो आइए हम आज के अध्ययन को आरंभ करने से पहले प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगे ताकि हम सब उसके वचन को समझ सकें। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीव तो सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीव तो सामर्थ्य वचन के लिए, जिसके माध्यम से आप हमें नई नई बातों को सिखाते और समझाते हैं। पिता परमेश्वर, आज जब हम आपके वचन को सीखने जा रहे हैं, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हम इससे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ की परिपूर्णता दे, ताकि जब हम आपके वचन को सुने तो निश्चित रूप से ये वचन हमारे हृदयों में कार्य करने पाए, हमारे हृदयों से बातचीत करने पाए, ताकि हम इस वचन के अनुसार अपने जीवन को ढाल सकें और आपके भय में अपने जीवन को बिता सकें। हम विनती करते हैं हमारे उन भाई बहनों के लिए जो बीमार हैं, जो दुखी हैं, जो निराश और परेशानी में हैं, प्रभु आप उनकी सुधि लें, उन्हें स्पर्श करें, उन्हें चंगाई दे, उन्हें आत्मिक शांति दे, ताकि वे जानने पाएं कि आप उनसे प्रेम करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं। चाहे उनके माता पिता, चाहे उनके भाई बहन, चाहे उनके मित्रगण उनसे नफरत क्यों ना करें, लेकिन आप उनसे प्यार करते हैं। प्रभु आप उनकी सहायता करें। प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, इन दिनों हम निर्गमन की पुस्तक उसके 35 अध्याय से अध्ययन कर रहे थे और आज हम अपने अध्ययन को अध्याय 36 से आरंभ करेंगे। मित्रों, इस अध्ययन में हम इन मुख्य विषयों पर विचार करेंगे, भेंट की वस्तुओं को कारीगरों को दिया जाना और लोगों की दानशीलता को सीमित करना, पर्दा का बनाना, पर्दा डालना और दरवाजा में लटकाना इत्यादि। आइए अब हम तंबू के निर्माण को देखें। मित्रों, यह अध्याय हमें तंबू की ओर वापस ले जाता है, जिसके बारे में हमने पहले ही इसके निर्देशों को देखा था कि तंबू कैसे बनाना है। अब हम देखते हैं कि वे तंबू का निर्माण निर्देशों के अनुसार ही कर रहे हैं। मित्रों, दिए गए निर्देश और नकल के अनुसार इसे बनाना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि तंबू परमेश्वर द्वारा मसीह का सजीव चित्रण है और यह उसे प्रकट करता है। हम निर्गमन की पुस्तक उसके 36 अध्याय और उसके एक पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, और बसलेल और ओहलीआब और सब बुद्धिमान जिनको यहोवा ने ऐसी बुद्धि और समझ दी हो कि वे यहोवा की सारी आज्ञाओं के अनुसार पवित्र स्थान की सेवकाई के लिए सब प्रकार का काम करना जाने, वे सब यह काम करें। मित्रों, हम यहाँ पर देखते हैं कि समूह के प्रत्येक सदस्य, जो संभवतः एक बड़ी भीड़ या संख्या में थे, और वे सब तंबू बनाने में लगे हुए थे, वे परमेश्वर की बुद्धि और समझ से परिपूर्ण थे जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया था, और बसलेल उनका मुखिया था। हम निर्गमन 36 उसके 2 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, तब मूसा ने बसलेल और ओहलीआब और सब बुद्धिमानों को जिनके हृदय में यहोवा ने बुद्धि का प्रकाश दिया था, अर्थात जिस जिसको पास आकर काम करने का उत्साह हुआ था, उन सबों को बुलवाया। मित्रों, अब यहाँ पर एक विशेष बात पर ध्यान दीजिए, जो प्रभु के कार्य में बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। यदि आप प्रभु की सेवा अनिच्छा से कर रहे हैं तो आप इसे न करें, क्योंकि परमेश्वर इस प्रकार के स्वभाव को उपयोग में नहीं ला सकते हैं, अर्थात उपयोग नहीं कर सकते हैं। तंबू को बनाने वाले वे लोग थे जो लकड़ी से सुंदर चित्रण बना रहे थे, जो परमेश्वर की उपासना के लिए प्रयोग होने वाला था, इसलिए यह उनके लिए एक नौकरी नहीं थी। वे किसी घड़ी को नहीं देख रहे थे कि कब समय खत्म होगा और वहां से चले जाएं। वे किसी कार्यकर्ता समिति के सदस्य भी नहीं थे। वे सिर्फ कुछ निश्चित घंटों के लिए या हफ्तों के लिए भी काम नहीं कर रहे थे कि काम करके वहां से चले जाएं। मित्रों, वे तंबू इसलिए नहीं बना रहे थे क्योंकि वो उनकी नौकरी थी। वे इसलिए काम नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें काम करना है। वे पहले गुलाम थे और अब वे फिर से गुलाम बन रहे हैं, ऐसा नहीं था। परंतु इस समय वे इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि वे करना चाहते हैं। उनके हृदय उनके कामों में लगे थे। मेरे मित्रों, इसी प्रकार से हमें भी परमेश्वर के कार्य को करना है। एक बार एक जवान प्रचारक मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा, मैं सेवा करना चाहता हूँ परंतु वचन बांटना या प्रचार करना नहीं चाहता। मैंने उसे सलाह दी कि वह सेवकाई करना छोड़ दे। मेरे मित्रों, उन व्यक्तियों के लिए सेवकाई में कोई भी जगह नहीं है जो परमेश्वर के वचन को पढ़ना और प्रचार करना पसंद नहीं करते हैं। यदि एक प्रचारक अपने कार्य को जोश के साथ नहीं करता है और जोश के साथ प्रचार नहीं करता तो उसे सेवकाई में रहना ही नहीं चाहिए। मित्रों, एक बार मैं एक कलीसिया में आराधना के लिए गया हुआ था और वहां पर एक प्रचारक संदेश दे रहा था जिसमें कोई भी मेहनत नहीं दिख रही थी, उसमें कोई भी जोश नहीं था और संदेश खिचड़ी की तरह मिल गया था। मेरे मित्रों, यदि आप प्रभु को जोश, उत्साह और जीवन शक्ति के साथ प्रचार नहीं कर सकते हैं तो प्रचार ही न करें। परमेश्वर उन लोगों को अपनी सेवकाई में नहीं चाहता है जो कुछ और करना चाहते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि बसलेल बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो क्या वह कोई फुटबॉल खेलने जा रहा है या क्रिकेट खेलने या कुछ सामाजिक कार्य के लिए जा रहा है? जी नहीं, बसलेल काम करने जा रहा है और वह भी परमेश्वर के लिए। मित्रों, क्या आपको मालूम है, यदि लोग अगले रविवार को जोश से भरकर कलीसिया में आते हैं तो बहुत जल्द पूरा शहर उन्हें देखने के लिए बाहर आ जाएगा कि इस संसार की इस कलीसिया में क्या हो रहा है। यह एक जागृति हो सकती है और परमेश्वर के कार्य को आनंद और खुशी के साथ करना चाहिए। हमें उसकी सेवा आनंद के साथ करनी चाहिए। रोमियों की पत्री 14 अध्याय उसके 5 में प्रेरित पौलुस ने कहा है, हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले। मित्रों, इसी निश्चयता के साथ हमें प्रभु की सेवा करनी चाहिए। हमें इस बात पर पूर्ण रूप से निश्चय होना चाहिए कि हम उसकी सेवा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम करना चाहते हैं और उसे प्रसन्न करने के लिए उत्सुक हैं। फिर से पहला कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय उसके 16 में पौलुस कहते हैं, यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। पौलुस सुसमाचार प्रचार करना चाहते थे। मित्रों, गिदोन के वे 300 लोग जो पानी के पास गए और उन्होंने घुटने टेक कर पानी नहीं पिया परंतु उन्होंने अपने हाथों में पानी लिया और उसे मुंह तक लाकर पिया, क्योंकि वे पीते समय अपने शत्रुओं को भी देख रहे थे। उन्होंने कहा, मिद्यानी लोग कहाँ हैं? हम उन पर काबू पाना चाहते हैं। ये बात हमें न्यायों की पुस्तक उसके 7 अध्याय और उसके 5-7 पद में मिलता है। आज हमारी कलीसियाओं में इसी प्रकार के उत्साह की आवश्यकता है। आज हम बहुत से मरे हुए संतों के साथ दलदल में फंस गए हैं और मेरे कहने का मतलब है कि उनके दफनाए जाने से पहले ही वे मरे हुए हैं। हम निर्गमन 36 उसके 3-5 पद में आगे पढ़ते हैं, और इसराइली जो भेंट पवित्र स्थान की सेवकाई के काम और उसके बनाने के लिए ले आए थे उन्हें उन पुरुषों ने मूसा के हाथ से ले लिया, तब भी लोग प्रति भोर को उसके पास भेंट अपनी इच्छा से लाते रहे, और जितने बुद्धिमान पवित्र स्थान का काम करते थे वे सब अपना अपना काम छोड़कर मूसा के पास आए और कहने लगे, जिस काम के करने की आज्ञा यहोवा ने दी है उसके लिए जितना चाहिए उससे अधिक वे ले आए हैं। मित्रों, मेरी जानकारी के मुताबिक यही एक स्थान है जहां पर लिखा हुआ है कि लोगों को देने से रोकना पड़ा। वे तंबू बनाने के लिए जितनी आवश्यकता की चीजें थी उससे भी अधिक सामान लाए। मैंने अपने सेवा काल में इस तरह के दान को अभी तक कहीं भी नहीं देखा है और न ही मैंने ऐसे दान के बारे में किसी से पहले सुना है। हम निर्गमन 36 उसके 6 पद में पढ़ते हैं, तब मूसा ने सारी छावनी में इस आज्ञा का प्रचार करवाया कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई पवित्र स्थान के लिए और भेंट न लाए। इस प्रकार लोग और भेंट लाने से रोके गए। यहाँ पर हम देखते हैं कि लोगों से निवेदन किया गया कि वे अब ना दें और उन्हें रोका गया और कहा गया कि वे काफी दान लाए हैं। यह सत्य है और यह सत्य के प्रकाश में एक बहुत ही आश्चर्य की बात है कि ये लोग अभी अभी गुलामी से बाहर निकले थे। इससे पहले उनके पास जो कुछ भी था वह उनका नहीं था और अब उनके पास बहुत है, और आप सोचेंगे कि वे उसे देकर दूर करने की इच्छा नहीं करते होंगे, परंतु उन्होंने उदारता से आनंद के साथ और जोश से भरकर अपने परमेश्वर को दिया। मेरे मित्रों, जो कुछ भी आप परमेश्वर के लिए करते हैं इसी तरीके से आपको करना चाहिए, उसी तरीके से परमेश्वर इसे करना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उत्साह के साथ दें। कुछ वर्षों पूर्व एक आदर्श वाक्य कहा गया था जो इस प्रकार था, उस समय तक देते रहें जब तक आपको कष्ट ना हो। मित्रों, परमेश्वर कहते हैं कि यदि आपको कष्ट होता है तो ना दें। हमारी आराधना परमेश्वर के लिए आनंद के साथ और हमारा दान देना भी उसी तरह से होना चाहिए। मित्रों, ऐसा लगता है कि हम लोग इस अध्याय में कुछ अलग बातों को और तंबू के विषय के कुछ भाग को फिर से देख रहे हैं। यद्यपि ऐसा लगता है कि इसे ठुकराया जा रहा है, परंतु पहले हमें तंबू की रूपरेखा या नक्शा दिया गया था, परंतु अब हम कार्य का प्रस्तुतीकरण करने पर आते हैं। हमें सिर्फ नक्शा और सामान ही नहीं चाहिए, परंतु हमें काम करने के लिए आगे बढ़ने की भी आवश्यकता है। इसराइली लोग इस अध्याय में काम आरंभ करने जा रहे हैं। हम आगे देखते हैं, पर्दा निर्गमन की पुस्तक 36 अध्याय के 8 पद में लिखा है, और काम करने वाले जितने बुद्धिमान थे उन्होंने निवास के लिए बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के और नीले, बैजनी और लाल रंग के कपड़े के 10 पटों को काढ़े हुए करूबों सहित बनाया। यह पूरे तंबू के लिए आवरण था। इस आवरण ने लकड़ी से बने हुए सामान को ढका था। यह बाहरी घेरा, यह नाजुक डोरे से बना मिस्र का कपड़ा मसीह की धार्मिकता को दर्शाता है। यह उसके चरित्र और काम के बारे में बताती है। यह उनके धार्मिकता के बारे में बताता है जो वह हमारे लिए उपलब्ध कराते हैं, ताकि हम उन्हें पहनकर परमेश्वर के सामने खड़े रह सकें और धर्मी ठहराए जाएं। मित्रों, एक महत्वपूर्ण बात जो ध्यान देने योग्य है वो यह है कि मसीह हमारी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। वह हमें उधार देने में सक्षम है। वह हमें छुटकारा दिला सकते हैं और अपने निकटता में रख सकते हैं। मित्रों, आगे हम देखते हैं तख्ता और घर, जिसको सॉकेट कहते हैं हम, बकरी के बाल के पर्दे, मेढ़ों की खाल का ओढ़ना, खाल और तख्ती और कब्जा भी मसीह के बारे में किसी न किसी रीति से कहते हैं। अब तंबू 30 हाथ लंबा, 10 हाथ चौड़ा और 10 हाथ ऊंचा था। यह बबूल की लकड़ी से बनाया गया था और तख्ते सोने से चारों तरफ मढ़े हुए थे। ये तख्ते 1.5 हाथ चौड़े थे। जब वे जंगल में एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रस्थान करते थे तो वे उसे गाड़ी पर चढ़ाकर ले जाते थे, क्योंकि यह बहुत भारी थे। हालांकि साज सज्जा के सामग्री को लेवी वंश के पुरोहित अपने कंधों पर ले जाते थे। सोने के तख्तों को पलटकर रखा जाता था, परंतु उसके सबके अपने अपने निश्चित घर या खांच होते थे जो चांदी के खांचों में ठीक बैठ जाते थे, और पूरा तंबू चांदी पर टिका होता था, और चांदी छुटकारे को दर्शाता है। तंबू खंभों के द्वारा जकड़ा व खड़ा किया जाता था। एक निश्चित कड़े प्रत्येक तख्ते में डाले जाते थे और जो तंबू को एक साथ जोड़ते थे, और यह एक बहुत ही ठोस निर्माण होता था। मित्रों, हम आगे देखते हैं भीतरी और बाहरी पर्दे। तंबू में एक भीतरी पर्दा था जो मुख्य तंबू को दो भागों में बांटता था, छोटा स्थान महापवित्र स्थान और बड़ा स्थान पवित्र स्थान था। तंबू की प्रत्येक वस्तु यीशु मसीह के कार्य या व्यक्तित्व के किसी न किसी भाग को दर्शाती थी। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 36 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 37 से जारी रखेंगे। इस अध्याय में हम इन मुख्य विषयों को देखेंगे कि बसलेल वाचा के संदूक को बनाता है, दया का सिंहासन मेज की रोटी को प्रकट करता है, दीवट धूप वेदी अभिषेक का तेल और सुगंधित करना आदि। मित्रों, इस अध्याय में जिन बातों की चर्चा की गई है उनका विस्तृत वर्णन निर्गमन की पुस्तक के पहले अध्यायों में भी किया जा चुका है, इसलिए उन्हें फिर से दोहराने के बजाय मैं कुछ मुख्य बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ जिसे मैं महत्वपूर्ण समझता हूँ। पहला हम देखते हैं तंबू का नक्शा। मित्रों, बाहरी आंगन में साज सामग्री के दो सामान थे, पीतल की वेदी और हौदी। जब आप पवित्र स्थान में अंदर जाते हैं तो वहां पर तीन सज्जा सामग्री के सामान देखते हैं, सोने की दीवट, मेज की रोटी और धूप की वेदी। महापवित्र स्थान में वाचा का संदूक और दया का सिंहासन था। तंबू में तीन भाग थे और तंबू में प्रवेश के लिए तीन द्वार भी थे। तंबू को घेरने वाले सनी के कपड़े के बाड़े से होकर एक द्वार निकलता था और दूसरा द्वार जो पवित्र स्थान को ले जाता था और तब तीसरा प्रवेश द्वार महापवित्र स्थान को ले जाता था, जहां पर साल में सिर्फ एक बार महायाजक प्रायश्चित के महान दिन जाता था, जिसे हम लय व्यवस्था की पुस्तक में विस्तार से देखेंगे, और दया के सिंहासन पर लोहू को छिड़कता था जिसके लिए दया का सिंहासन बना हुआ था। अब हम आगे देखते हैं तंबू के लिए सज्जा सामग्री के समान। मित्रों, सज्जा सामग्री के साथ सामानों को इस तरीके से सजाया गया था जो हमें एक अद्भुत तस्वीर देते हैं। पीतल की वेदी मसीह के क्रूस के बारे में बताती है, जहां पर हम लोग पापों के क्षमा को प्राप्त करते हैं, और हौदे मसीह की सत्यता को बताती है कि वह हमें साफ करने या उन्हें शुद्ध करते हैं जो उनके अपने हैं। हौदी वह स्थान है जहां पर हम अपने पापों को मानते हैं और अपने पापों से क्षमा और शुद्धिकरण को प्राप्त करते हैं। मित्रों, पवित्र स्थान आराधना का स्थान है। इसमें सोने की दीवट मसीह को जगत की ज्योति के रूप में दर्शाती है और मेज की रोटी मसीह को जीवन की रोटी के रूप में दर्शाती है, जिसमें हम सब तृप्त किए जाते हैं। और धूप वेदी प्रार्थना का स्थान है जो मसीह को हमारा मध्यस्थता के रूप में दर्शाता है। हम इब्रानियों की पत्री में धूप वेदी को महापवित्र स्थान में रखे हुए पाते हैं, पवित्र स्थान में नहीं बल्कि महापवित्र स्थान में, क्योंकि हमारा मध्यस्थ करने वाला अब स्वर्ग में है, परंतु धूप वेदी पवित्र स्थान में बाहर है, जहां पर मैं और आप आज भी आ सकते हैं। मित्रों, जब विश्वासी परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं तो वे पवित्र स्थान में आते हैं। पापों को स्वीकार करना, स्तुति करना, धन्यवाद देना, मध्यस्थता करना और निवेदन करना, ये सारी बातें आराधना के साथ होनी चाहिए और ये सब पवित्र स्थान में होता है। यदि आप चाहते हैं कि ज्योति को प्राप्त करें जो संसार देता है तो आप बाहर जाएं, परंतु यदि आप दीवट से ज्योति पाना चाहते हैं तो आपको अंदर आना होगा। मित्रों, मसीह की सेवा करने के लिए आप संसार के ज्ञान के द्वारा नहीं चल सकते हैं, परंतु परमेश्वर के वचन के प्रकाश के द्वारा चलना होगा। मित्रों, महापवित्र स्थान यीशु मसीह को परमेश्वर की उपस्थिति में दर्शाता है। इब्रानी के पत्री में हमसे कहा गया है कि हम अनुग्रह से सिंहासन के पास आएं। दया का सिंहासन इसे दर्शाता है और यही वह स्थान है जहां पर हम सहायता के लिए अनुग्रह और दया आवश्यकता के समय में पाते हैं। विश्वासियों के लिए स्वर्ग में एक दया का सिंहासन है। मित्रों, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए तो उसने न केवल तंबू के उस चित्र को पूरा किया, परंतु उसने उससे भी बढ़कर एक असाधारण कार्य किया। जंगल में तंबू हमेशा पृथ्वी के साथ समतल होता था। यह पृथ्वी के समतल क्षेत्र में खंभे और तख्ते के साथ खड़े किए जाते थे जो उनके सही कड़ी में बैठते थे, परंतु जब मसीह हमारे पापों की कीमत चुकाने आए तो उन्होंने उसे अभिलंब बना दिया। क्रूस वह पीतल की वेदी थी जहां पर परमेश्वर का मेमना हमारे पापों के बदले में बलिदान हुआ। वह यहां पर हमें बचाने के लिए मर गए, परंतु अब वह स्वर्ग में वापस चले गए हैं जहां पर वह रहते हैं ताकि हमें सुरक्षित रख सकें। मित्रों, आज महापवित्र स्थान स्वर्ग में है। आज हम परमेश्वर के पास समतल तरीके से नहीं जा सकते हैं जो एक मनुष्य के द्वारा या किसी बड़े मकान में जाने के द्वारा, परंतु हम स्वर्ग की ओर देखते हैं और उसके पास यीशु मसीह में होकर सीधे जाते हैं, क्योंकि पहला तीमुथियुस की पत्री 2:5 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर तथा मनुष्यों के बीच एक ही मध्यस्थ भी है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। मित्रों, आज आप तंबू से संबंधित बातों के विषय में कहां पर हैं? क्या आपको पीतल की वेदी पर खड़े होने की आवश्यकता है कि आप बचाए जाएं? आज बहुत से लोग हैं, यहां तक कि कलीसिया के सदस्य भी, जिन्हें वहां जाने की आवश्यकता है। क्या आप कलंकित मसीही हैं जिसे अपने पापों को स्वीकार करने और हौदी में शुद्ध होने की आवश्यकता है, या क्या आप आज अंधेरे में चल रहे हैं? यदि हाँ, तो पवित्र स्थान के पास अंदर सोने के दीवट के प्रकाश के पास आइए। हो सकता है कि आपका आत्मिक जीवन थोड़ा कमजोर है, और आपको जीवन की रोटी खाने की आवश्यकता है ताकि आप पोषण प्राप्त करें। हो सकता है कि आपका प्रार्थना में जीवन तुच्छ हो और आपको धूप वेदी के सामने खड़े होने की आवश्यकता है। शायद आप किसी समस्या में हैं और आपको दया, अनुग्रह और सहायता की आवश्यकता है। तो ठीक है, आज आपके लिए एक दया का सिंहासन है, तो आप वहां जाइए और सहायता को स्वीकार कीजिए जो वहां आपका इंतजार कर रहा है। मेरे मित्र, परमेश्वर आपको आशीष देना और मार्गदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन क्या आज आप उसके आशीष और मार्गदर्शन को पाना चाहते हैं? हाँ या नहीं, निर्णय आपके हाथों में है, क्योंकि उसने अपना काम इस पृथ्वी पर आपको बचाने के लिए अपना बलिदान देकर पूरा कर दिया है। आज आपकी बारी है कि आप किसे चुनते हैं, क्योंकि इस संसार के सुख विलास के लिए अर्थात क्षणिक सुख के लिए लोग परमेश्वर को त्यागने के लिए भी तैयार हैं और वे थोड़ा भी नहीं हिचकते। उनके सामने स्वर्ग का सुख कम लगता है। वे इस बात को भी भूल जाते हैं कि उन्हें एक दिन अनंत काल का दंड भोगना पड़ेगा, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 20 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया अर्थात फेंक दिया गया, और यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। मित्र, आप क्या चाहते हैं, आग की झील में फेंक दिया जाना या परमेश्वर के राज्य में आनंद और सुख प्राप्त करना? आप आज ही निर्णय लें, और हो सकता है कि कल हमें देखने को ना मिले, इसलिए इसे बड़ी गंभीरता से लें। मित्रों, आज हमारे अध्ययन का समय यहीं पर समाप्त होता है, और मैं विश्वास करता हूं कि आपको इस अध्ययन से अवश्य ही आशीष मिला है, और आज आप सही निर्णय जीवन के लिए लेंगे और प्रभु की निकटता में आकर उसके आशीषों को अनुभव करेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
मेरा संगीत है तू, मेरा हर गीत है तू, मेरे प्यारे मसीहा, मेरा मन नीत है तू, मेरा संगीत।